ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सीमा शर्मा। आरंभ में आज के मुख्य समाचार शीर्षक। सरकार ने दूरगामी महत्व के कार्यों का किया है प्रधानमंत्री का कथन। सरकार की प्रगति में आत्मभर्त्सना न करने का नेकपा के नेता कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। संघीयता में राज्य के स्रोत साधनों का वितरण समानुपातिक रूप में होने के कारण हर क्षेत्र में विकास है संभव। संचार मंत्री डॉ युवराज खतिवाड़ा का कथन। पूर्वाधार विकास के लिए पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधन में प्रति लीटर 10 रूपये कर लेने का सरकार ने किया निर्णय। और दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 38, चल रहा है घायलों का इलाज। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि सरकार ने दूरगामी महत्व के कामों को हमेशा महत्व दिया है और इस ओर निरंतर आगे बढ़ रहा है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की बागमती प्रदेश संगठन कमेटी द्वारा आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश में निरंतर हो रही आर्थिक प्रगति के कारण जहां देश एक ओर तीव्र आर्थिक विकास करने वाले 10 देशों में समाविष्ट हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश के अंदर ही आत्मभर्त्सना की कवायद जारी है। मौके पर उन्होंने कहा कि तेरथुम अपने जन्मस्थल में करीब 4000 घरों में पानी मुहैया कराया, बिजली और बैंकिंग सेवा की शुरुआत की, परंतु इन सभी विषयों को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। परंतु अपने जन्मदिन पर जब उन्होंने केक काटा तो इसका दुष्प्रचार किया गया। इसी तरह उन्होंने कहा कि देश सुरंग मार्ग के युग में प्रवेश कर चुका है और इन सभी के साथ रेल संचालन की तैयारी और पुल निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा ने कहा है कि संघीयता की वजह से विकास का अभियान गांव-गांव में तीव्र रूप से आगे बढ़ रहा है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सार्वजनिक करने के लिए संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता समेत रहे संचार मंत्री डॉ खतिवड़ा ने बताया कि संघीयता में राज्य के स्रोत साधनों का वितरण समानुपातिक रूप में होता है, इस वजह से देश के हर क्षेत्र का विकास शीघ्र ही होगा। एक प्रश्न का जवाब देते हुए मंत्री डॉ खतिवाड़ा ने कहा कि पूर्व संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री का ऑडियो प्रकरण के विषय में संस्थागत ढंग से निरूपण किया जाएगा। इसी क्रम में मंत्री डॉ खतिवाड़ा ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल का पूर्वाधार विकास कर बढ़ाया है। बता दें कि पहले पेट्रोल डीजल और हवाई ईंधनों में 5 रूपये का कर लिया जाता था, अब इनमें और 5 रूपये की बढ़ोतरी कर 10 रूपये बनाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार ने बीरगंज में चीनी कारखानों के स्वामित्व में रहे जमीन में से 6 बीघा जमीन को बिक्री करने, स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमों का संचालन कार्यविधि दूसरा संशोधन नियमावली स्वीकृत किया है। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि बैठक ने मौला कालिका केबल कार आयोजन के लिए नवलपुर जिले के मौला कालिका सामुदायिक वन और मौला कालिका धार्मिक वन का करीब 3 हेक्टेयर जमीन और सिद्धार्थ केबल कार योजना के लिए बुटवल 1 स्थित वन क्षेत्र का 2 हेक्टेयर जमीन प्रयोग के लिए देने का निर्णय लिया है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने भ्रष्टाचार, सरकार के कामों, विकास निर्माण कार्यों में हो रही ढिलाई आदि विषयों में सदन के जरिए सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। बैठक में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सांसद जनार्दन शर्मा ने नेपाल ट्रस्ट द्वारा जारी की गई श्वेत पत्र में अपना नाम शामिल होने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उस समय वे पद पर नहीं थे, इसलिए उन्होंने श्वेत पत्र को अश्वेत पत्र की संज्ञा दी। इसी तरह बैठक में सांसद दुर्गा पौडेल ने प्रिंटिंग प्रेस खरीद प्रकरण में पूर्व संचार मंत्री के ऑडियो प्रकरण में संलग्न लोगों का पर्दाफाश करने की मांग रखी। इसी तरह बैठक में मोहम्मद इश्तियाक राय, प्रेम शुवाल, पदमगिरी, ब्रजेश कुमार गुप्ता, पुष्पा भूषाल, महेंद्र यादव, अथर कमाल मुसलमान आदि सांसदों ने विविध विषयों में सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब वक्त है व्यावसायिक विश्राम का।
भाजु दर्शन
भाग्यवानी बाबू राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14*15 ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा की आज की बैठक में अध्यागमन विधेयक 2076 पेश किया गया। बैठक में गृहमंत्री राम बहादुर थापा की तरफ से शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल ने विधेयक पेश किया। इसी तरह बैठक ने परमाणविक विधेयक 2075 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। विधेयक के सैद्धांतिक विषयों में उठे प्रश्नों का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री पोखरेल ने कहा कि नेपाल में रेडियोधर्मी पदार्थ का प्रयोग स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पुरातात्विक क्षेत्रों में प्रयोग होता है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक फागुन 20 गते दोपहर 2 बजे तक के लिए तय की गई है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक गणपूरक संख्या के पूरा न होने के कारण स्थगित की गई है। बैठक में सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा ने बताया कि संघ प्रदेश और स्थानीय तह विधेयक 2076 के विषय में निर्णयार्थ करने के लिए प्रस्तुत करने वाले थे, परंतु फिर नेपाली कांग्रेस के सांसद देव प्रसाद तिमल सिन्हा के गणपूरक संख्या का पूरा न होने के कारण नियमापत्ति जताई थी। डडेलधुरा में भूस्खलन के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। जिला के नवदुर्गा गांवपालिका 2 की पेड़ पानी में रहे अमरघाट झोलुंगे पुल के फाउंडेशन में काम कर रहे मजदूर पर भूस्खलन होने से बेड़ पानी के 66 वर्षीय डमरे लुहार के मौत हो गई, ये जानकारी पुलिस ने दी। घायलों के डडेलधुरा अस्पताल में इलाज हो रहा है, ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय डडेलधुरा के प्रहरी नायब उपरीक्षक दधिराम न्योपाने ने दी। मकवानपुर के हेटौड़ा उपमहानगरपालिका 15 की चुरियामाई में आज 2 मोटरसाइकिल एक आपस में टकराने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। हादसे में परसा के बीरगंज महानगरपालिका 23 की 30 वर्षीय अफताब आलम अंसारी की मौत हो गई, ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय मकवानपुर ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गई है। एपीपी पार्षद ताहिर हुसैन पर लगे सभी आरोपों की जांच एसआईटी करेगी। दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता मनदीप सिंह रांधवा ने कहा कि दिल्ली पुलिस की टीम इस हिंसा से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तार के लिए छापेमारी कर रही है। हिंसाग्रस्त इलाकों में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कपिल मिश्रा ने कहा कि सड़क पर बैठे लोगों की वजह से 35 लाख लोगों को परेशानी हो रही थी। मैंने रोड खुलवाने की बात कही तो मुझे आतंकी कहा जा रहा है। उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा मामले में पुलिस ने अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपित की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने अब तक 48 एफआईआर दर्ज की है। केजरीवाल ने कहा कि अगर हिंसा में कोई आम आदमी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता शामिल हुआ है तो उसे 2 गुनी सजा मिलनी चाहिए। हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को दिल्ली सरकार 10 लाख मुआवजा देगी। दिल्ली सरकार एसीपी मंजीत सिंह रांधवा ने शांति बहाली के लिए दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन और अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में लोगों से शांति बहाली में सहयोग देने की अपील की गई। उधर हिंसाग्रस्त खजूरी खास में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया। स्पेशल सीपी कानून और व्यवस्था एसएन श्रीवास्तव गुरुवार को खजूरी खास में लोगों के बीच पहुंचे और सभी से शांति बहाली की अपील की। उन्होंने लोगों से कहा कि सब मिलकर भाईचारे के साथ काम करें, पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए तत्पर है। उत्तरी पूर्वी दिल्ली में हिंसा को लेकर 3 दिन बाद अहम खुलासा हुआ है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। सरकार ने दूरगामी महत्व के कार्यों को किया है प्रधानमंत्री का कथन। सरकार की प्रगति में आत्मभर्त्सना न करने का नेकपा के नेता कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री ने किया आग्रह। संघीयता में राज्य के स्रोत साधनों का वितरण समानुपातिक रूप में होने के कारण हर क्षेत्र में विकास है संभव। संचार मंत्री डॉ युवराज खतिवड़ा का कथन। पूर्वाधार विकास के लिए पेट्रोल, डीजल और हवाई ईंधन में प्रति लीटर 10 रूपये कर लेने का सरकार ने लिया निर्णय। और दिल्ली हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 38, चल रहा है घायलों का इलाज। इसी के साथ कल तक के लिए हिंदी समाचार बुलेटिन से दीजिए आज्ञा। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभरात्रि।